देवों के देव महादेव श्री महाकालेश्वर भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वार वार वंदन। अब मंगलाचरण के रूप में मैं महानाटककार श्री भवभूति महाकवि जी का एक श्लोक उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। उसके बाद रस सिद्धांत के विषय में आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस के विषय में विवेचन या वर्णन करेंगे। तो उत्तर रामचरितम भवभूति का ये मंगलाचरण में प्रस्तुत करता हूँ। पहले इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, वंदे मही चतां वाचाम अमृतमात्मनः कलाम। नमस्कार। रस सिद्धांत जो काव्य शास्त्र में है और रस के विषय में आचार्यों के विचार, और कई आचार्यों ने रस पर बड़ा ही विस्तार के साथ विवेचन प्रस्तुत किया है, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस पर गहन अपने विचार प्रकट किए हैं, अर्थात रस के विषय में उनका वर्णन बड़ा ही सूक्ष्म है। संस्कृत साहित्य में आचार्य भरत मुनि का अवतरण एक अद्वितीय उपलब्धि भी मानी जा सकती है। इनका संबंध मुख्यतः नाट्य शास्त्र से ही है, अर्थात ये नाट्य शास्त्र के ही आचार्य माने जाते हैं। फिर भी काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इनका बड़ा ही योगदान है, विशेषकर ये काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के जनक के रूप में भी प्रसिद्ध है। महर्षि भरत मुनि का रस सिद्धांत काव्य शास्त्र में रस पर वैचारिक दृष्टि से अनेक वातायन खोलता है। आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत की एक वैज्ञानिक पद्धति से व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रस निष्पत्ति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उनका ये रस सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि इस प्रकार है। विभाव अनुभाव व्यविचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यविचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से विभाव अनुभाव एवं व्यविचारी भावों से पुष्ट स्थायी भाव ही रस बनता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस को मूल तत्व माना है। काव्य शास्त्र के अनेक आचार्य भी रस को ही मूल तत्व मानते हैं। इस विषय में आचार्य भरत मुनि का निम्न श्लोक उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है। यता बीजाद भवेद वृक्षो वृक्षात पुष्पम फलम तथा मूलम रसः सर्वे तेभ्यो वाभा व्यवस्थितः, अर्थात मिट्टी में दबा हुआ बीज जब अपने स्वरूप में परिवर्तन करता है तो एक दिन हमें एक विशाल वृक्ष के रूप में देखने को मिलता है और इसी वृक्ष से पुष्प और फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रस मूल होता है, जिससे सभी भाव व्यवस्थित होते हैं। भरत मुनि तो शब्द और अर्थ को रस के बिना पूर्ण भी नहीं मानते हैं। नहीं रसाद्रिते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, अर्थात नाट्य या काव्य का कोई भी अर्थ रस निरपेक्ष होकर नहीं चल सकता। काव्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र में रस के विस्तार क्षेत्र के विषय में भरत मुनि कहते हैं कि काव्य को रस से उसी प्रकार ओतप्रोत कर देना चाहिए जिस प्रकार मधुमास में उद्यान भूमि पुष्पों से अवकीर्ण होती है। पुष्पा अवकीर्ण कर्तव्य काव्येषु ही रसा बुधई। भरत मुनि के मत अनुसार यहाँ ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मधुमास के समय ईश्वर की प्रकृति में मधुर और सुरम्य वातावरण का आगमन हो जाता है, स्वतः ही इस प्रकृति के पेड़ पौधों में नवीन पत्ते या कोंपले आ जाती है और उनमें पुष्प और पुष्पों में रस आ जाता है। यहाँ रस ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुष्पों में रस के आगमन होने के साथ ही रस प्राप्ति करने के लिए भ्रमर, मधुमक्खियाँ आदि आ जाते हैं। इसी प्रकार से कवि को अपने काव्य की रचना करना चाहिए जिसमें रस स्वतः ही उपस्थित हो जाए, और उस काव्य रस को प्राप्त करने के लिए काव्य रसिक आकृष्ट होते चले आए। आचार्य भरत मुनि ने रस का आधार भाव को माना है और रस को काव्य या नाट्य का आधार माना है। भाव के दो प्रकार माने जाते हैं, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव। तो नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 और 7 में रस तथा भावों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने रस तत्व पर जितना जोर दिया उतना किसी अन्य तत्व पर नहीं, जबकि उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र के अध्याय 16 में अलंकारों का वर्णन किया है। नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या तथा उनकी प्रमुखता व गुणता पर भी विचार किया गया है। भरत के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जिनमें से 4 रस प्रमुख है, बाकी के 4 रस इन्हीं प्रमुख रसों से उत्पन्न होते हैं। तो तेषाम उत्पत्ति ये तवश्चत्वारो रसाः तद यतः श्रृंगारो रौद्रो वीरो विवत्स इति। तो भरत मुनि ने यह भी स्पष्ट किया है कि किस रस से किस रस की उत्पत्ति होती है। जैसे श्रृंगारादेर भवेद हास्यो रौद्रश्च करुणो रसाः वीरात चेद वीराच्च एव अद्भुतो उत्पत्तिर विवत्सात च भयानकः। अर्थात श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से उद्भूत और अद्भुत और विवत् से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उपर्युक्त उद्धरण में भरत मुनि ने श्रृंगार रस को प्रथम स्थान दिया है, जिसकी वजह से परवर्ती आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया है कि श्रृंगार एक एव रसः, अर्थात श्रृंगार ही एक रस है। तो इस प्रकार से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का ही केवल विवेचन नहीं किया, बल्कि रसों के रंगों और देवताओं के विषय में भी विवेचन किया है। भरत मुनि का रस सिद्धांत एक युगांतकारी घटना है, जो कि नाट्य शास्त्र की दृष्टि से ही नहीं बल्कि काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भरत का रस सिद्धांत काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र के बीच एक संधि का कार्य करता है। भरत के बाद इस सिद्धांत पर खूब जोर शोर से विचार विमर्श हुआ है। अनेक आचार्यों ने रस की उपादेयता को आगे बढ़ाया है और काव्य शास्त्र में इसका स्थान मूल तत्व के रूप में उपस्थित किया, यहाँ तक कि रस को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आज भी रस की स्थिति काव्य शास्त्र में अक्षुण्य है। आचार्य भरत मुनि के पश्चात अर्थात उनके परवर्ती काल में रस विवेचन के अतिरिक्त काव्य शास्त्रीय अन्य तत्वों का भी खूब विवेचन हुआ है। तो आचार्य भरत के तत्काल बाद अर्थात भरत मुनि से लेकर आचार्य वामहा के समय के बीच में कोई भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। तो इस लगभग 800 वर्षों के अंतराल में रस सिद्धांत को लेकर कोई ना कोई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अवश्य लिखा गया होगा, किंतु इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वह कौन सा ग्रंथ था। लेकिन आचार्य भरत मुनि के बाद काव्य शास्त्रीय दृष्टि से आचार्य वामहा को इस क्षेत्र में आद्य आचार्य के रूप में माना जाता है। वामहा के बाद इस क्षेत्र में आचार्य दंडी का स्थान आता है। लेकिन इन दोनों ही आचार्यों में एक सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है, वह यह है कि इनके उपलब्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में रस तत्व के प्रति इनकी विशेष रुचि दिखाई नहीं देती है, किंतु ये रस तत्व से परिचित थे और इन्होंने उसका वर्णन भी किया है। भामा और दंडी दोनों ही अलंकार और गुणों पर विशेष जोर देते हैं। इनका यह मानना है कि गुणों से विहीन काव्य कवि को कुकवि और गुणों से युक्त काव्य कवि को सुकवि बनाता है। इन आचार्यों को भरत के नाट्य शास्त्र के अलावा महाकवि कालिदास अश्वघोष आदि कवियों के काव्यों का भी ज्ञान था, क्योंकि इस विषय में वामहा तथा दंडी दोनों ने महाकाव्यों के लक्षणों का उल्लेख किया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि महाकाव्य सभी रसों से युक्त होना चाहिए। इस विषय में भामा का निम्न कथन है कि चतुर्वर्ग विधानों अपि भूयशो अर्थो उपदेश कृत युक्तम लोक स्वभावेन रसयश्च शकल ही पृथक। तो आचार्य भामा ने रस की गणना अलंकारों के अंतर्गत की है। ये रस की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन रस का स्वतंत्र रूप से वर्णन न करके इन्हें अलंकारों में ही अंतर्भूत करते हैं और रस को रश्वत अलंकार के रूप में उपस्थित करते हैं। तो इस प्रकार तो भामा और दंडी दोनों रस को एक अलंकार के रूप में मानते हैं, फिर भी भामा की अपेक्षा दंडी में रस के प्रति कुछ झुकाव दिखाई देता है। इनके ग्रंथों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें श्रृंगार वीर इत्यादि रसों का अच्छा स्वरूप देखने को मिलता है। भामा और दंडी के बाद काव्य शास्त्री की दृष्टि से अनेक आचार्यों ने रस पर स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत किया है। इनमें कुछ आचार्यों ने भरत के नाट्य शास्त्र के रस सिद्धांत का विस्तृत विवेचन नाट्य शास्त्र पर स्वलिखित टीकाओं में किया है। इनमें से केवल अभिनव गुप्त द्वारा लिखित टीका अभिनव भारती ही उपलब्ध है। अभिनव गुप्त ने इसमें रस का बड़ा ही विस्तृत विवेचन अभिव्यक्तिवाद के नाम से किया है और ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। इनके अलावा भट्ट उद्भट, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक और भट्ट नायक आदि टीकाकारों ने भी रस पर अपनी अपनी दृष्टियों से विचार अर्थात विवेचन किया है। तो परवर्ती काल में रस सिद्धांत के ऊपर अनेक काव्य शास्त्रियों व नाट्य शास्त्रियों द्वारा स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए। इनमें से शारदा तने का ग्रंथ भाव प्रकाश में रस का स्वरूप व उसके भेद तथा भावों इत्यादि का नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से विस्तृत विवेचन किया गया है। इस प्रकार से रस सिद्धांत का सर्वांगीण विस्तृत विवेचन नाट्य शास्त्र के अध्याय 6-10 रूपक, चौथा प्रकाश साहित्य दर्पण के अध्याय 3 तथा रस तरंगणी आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है। परवर्ती समय में रसों की संख्या के विषय में कुछ मतभेद आचार्यों में देखा जा सकता है। जहां भरत के नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख मिलता है, वही भरत के बाद में ये संख्या 12 तक पहुँच गई है। तो रस सिद्धांत या रस काव्य शास्त्र में एक ऐसा तत्व है जिस पर काव्य शास्त्री आचार्यों ने गहन विचार प्रस्तुत किया है और रस सिद्धांत को काव्य शास्त्र में प्रमुखता दी है और उसको काव्य का प्राण तत्व के रूप में प्रतिष्ठित भी किया है। तो इस प्रकार से रस सिद्धांत के विषय में ये हमारा विचार अर्थात प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अलंकार सिद्धांत के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद मीना, संस्कृत अध्ययन शाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, और आप सभी सुरक्षित रहें और सावधान रहें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।